بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سمانیہ شروتا زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ پریہ شروتا مترو، کارکرم کا شبھارمبھ پوتر قرآن کے سورہ لقمان کی 16ویں، 17ویں اور 18ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کیا جا رہا ہے۔ قاری ہیں شری مصطفیٰ اسماعیل۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا بني إنها فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها
اللہ کے نام سے جو اتیان کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ لقمان نے کہا، ہے میرے بیٹے، یدی وہ کرم رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ کسی چٹان کے بھیتر ہو یا آکاشوں یا دھرتی میں، ایشور اسے پرلے میں سامنے لے آئے گا۔ نسندے ایشور سوکشم درشی اور جانکار ہے۔ ہے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور بھلائی کا آدیش دو اور برائی سے روکو، اور جو بھی مصیبت تم پر پڑے اس پر دھیر کرو، نشچے ہی یہ بڑے ساہس کا کام ہے۔ اور لوگوں کے سامنے گھمنڈ سے اپنا منہ ٹیڑھا نہ کرو، اور نہ دھرتی پر اکڑ کر چلو، निसंदेह ईश्वर किसी अकड़ने वाले और इतराने वाले को पसंद नहीं करता।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9390 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। आज गुरुवार है, इसवन की 12, रजब की 29 और मार्च की 3 तारीख। इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे विश्व समाचार, उसके बाद राजनीतिक चर्चा और उसके बाद आज की बात। अंतिम कार्यक्रम होगा सफल महिलाएं। तो दोस्तों, ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। सैयद मिसम और मरियम मेहरदादी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान ने यूक्रेन में युद्ध का विरोध करते हुए दोनों पक्षों से कूटनीतिक मार्ग अपनाने की मांग की है। फ्रांस के आर्थिक युद्ध की धमकी के जवाब में रूस ने वास्तविक युद्ध की चेतावनी दी। यूक्रेन पर रूस के हमले में चीन की मिलीभगत को बीजिंग ने फेक न्यूज बताया है। अमेरिका के एक बड़े सहयोगी यूएई ने यूक्रेन संकट पर वाशिंगटन का साथ छोड़ दिया है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने रूस और यूक्रेन से हालिया संघर्ष का राजनीतिक समाधान निकालने का आह्वान किया है और कहा है कि तेहरान मानवीय सहायता प्रदान करने में अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। बुधवार को रेडक्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष पीटर मॉरर के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत में ईरानी विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान ने यूक्रेन के सीमावर्ती क्षेत्रों में सहायता वितरण और यमन और अफगानिस्तान की मानवीय स्थिति के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। इस बातचीत में ईरानी विदेश मंत्री ने राजनीतिक रूप से यूक्रेन संकट को हल करने के महत्व पर बल दिया और कहा कि युद्ध कोई समाधान नहीं है। ईरानी विदेश मंत्री ने रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति और ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के बीच सहयोग को मजबूत बनाने का भी आह्वान किया।
संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में रूस के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। बुधवार को सुरक्षा परिषद में रूस के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 141 मत पड़े, जबकि 5 देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया। रूस के पक्ष में वोटिंग करने वाले देश थे सीरिया, उत्तरी कोरिया, बेलारूस, एरिट्रिया और रूस। विश्व के 35 देशों ने इस प्रस्ताव से दूरी बनाए रखी, अर्थात वे वोटिंग के समय अनुपस्थित रहे। महासभा के निंदा प्रस्ताव के पारित होने के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि इस प्रस्ताव में पक्ष में मतदान करते हुए 141 देश यूक्रेन से रूसी सेना के तत्काल वापसी का समर्थन करते हैं। उन्हों ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के अनुसार यूक्रेन की एकता और अखंडता का सम्मान किया जाए।
रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने फ्रांस की आर्थिक युद्ध की धमकी पर पलटवार करते हुए कहा है कि इतिहास में इस तरह के युद्ध अक्सर वास्तविक युद्ध में बदल जाते हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन डिमित्री मेदवेदेव ने फ्रांस को वास्तविक युद्ध की धमकी देते हुए कहा कि मास्को पर पश्चिम के अत्यधिक दबाव के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। गौरतलब है कि फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रूनो ली मायरे ने रूस के खिलाफ व्यापक आर्थिक युद्ध छेड़ने की धमकी दी थी। ली मायरे का कहना था कि यूक्रेन पर रूस के हमले के जवाब में यूरोपीय संघ मास्को की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक शक्ति संतुलन पूर्ण रूप से यूरोपीय संघ के पक्ष में है और रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसके जवाब में मेदवेदेव ने मायरे को संबोधित करते हुए कहा कि आप अपनी जबान पर नियंत्रण रखिए और ये मत भूलिए कि इतिहास में अक्सर आर्थिक युद्ध वास्तविक युद्ध में बदल जाते हैं।
यूक्रेन संकट के बाद किर्गिस्तान में सोना खरीदने की होड़ लग गई है। यूक्रेन के विरुद्ध रूस की सैन्य कार्रवाई के बाद विश्व में अनेक स्थानों पर अलग अलग तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। इस संकट के कारण बहुत से लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच किर्गिस्तान में लोग यूक्रेन संकट के बाद सोना खरीदने के लिए उतावले हो गए हैं। वहां पर लोग अधिक से अधिक सोना खरीद रहे हैं। इस देश में सोने की दुकानों पर काफी भीड़ देखी जा रही है। किर्गिस्तान से के राष्ट्रपति सादिर जबारोव ने इस देश की जनता का आह्वान किया है कि महंगाई से बचने के लिए वे सोने की खरीदारी करें। यूक्रेन और रूस में तनाव बढ़ने के बाद किर्गिस्तान में विदेशी मुद्रा में अस्थिरता पैदा हो गई है। इस देश के राष्ट्रपति द्वारा लोगों से सोना खरीदने के आह्वान के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आ गई है।
चीनी विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले कथित चीनी और रूसी समन्वय के बारे में मीडिया रिपोर्टों को फेक न्यूज करार दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने बुधवार को एक नियमित मीडिया ब्रीफिंग में कहा, ध्यान हटाने और दोष मढ़ने की ऐसी कोशिशें घृणित हैं। बुधवार को अमरीकी अधिकारियों ने दावा किया था कि कुछ खुफिया रिपोर्टें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि चीनी अधिकारी यूक्रेन पर रूस के हमले की योजना से पहले से ही अवगत थे। वाशिंगटन स्थित चीनी दूतावास के प्रवक्ता लियू पेंगयू का कहना है कि ऐसी रिपोर्टों में जो दावे किए जा रहे हैं वो बिना किसी आधार के हैं और सिर्फ अटकलबाजी है और इसका उद्देश्य चीन पर दोष मढ़ना और उसे भी इस संकट में खींचना है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि चीन ने रूस से अनुरोध किया था कि बीजिंग ओलंपिक्स के समापन तक वो यूक्रेन पर हमले की अपनी योजना को टाल दे।
चीन का कहना है कि पश्चिम द्वारा रूस के विरुद्ध लगाए जा रहे प्रतिबंधों का वो कभी भी हिस्सा नहीं बनेगा। रूस द्वारा पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों को मान्यता देने और सैन्य कार्रवाई के कारण मॉस्को पर अमरीका और उसके पश्चिम घटक प्रतिबंध लगा रहे हैं। चीन के बैंकिंग और बीमा आयोग के प्रमुख ने कहा है कि बीजिंग रूस के विरुद्ध पश्चिमी प्रतिबंधों का खुलकर विरोध करता है। गो शूकिंग ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम इस प्रकार के प्रतिबंधों का हिस्सा कभी भी नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि हम अपने आर्थिक और वित्तीय आदान प्रदान को सुरक्षित रखेंगे। चीन के अनुसार हम उन प्रतिबंधों के बिल्कुल खिलाफ है जिनको एक पक्षीय रूप में लगाया गया है क्योंकि इनका कोई भी कानूनी आधार नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसके अच्छे परिणाम सामने नहीं आएंगे। चीन के बैंकिंग और बीमा आयोग के प्रमुख का कहना था कि रूस विरोधी प्रतिबंधों का चीन की अर्थव्यवस्था पर अभी तक कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है और आगे भी नहीं पड़ेगा।
यूक्रेन पर हमले के बाद जब पश्चिमी दुनिया ने रूस को अलग थलग करने का प्रयास किया तो यूएई उन कुछ देशों में से एक था जिन्होंने मास्को का खुलकर समर्थन तो नहीं किया लेकिन उसके विरोधी देशों का साथ भी नहीं दिया। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक आपातकालीन सत्र में भारी संख्या में देशों ने यूक्रेन पर प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस की कड़ी आलोचना की गई थी और उससे तुरंत अपनी सेना वापस बुलाने की मांग की गई थी। हालांकि शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान इसी तरह के प्रस्ताव पर एक वोट के हिस्सा नहीं लेने के कारण नतीजा इसके विपरीत निकला। रविवार को ट्विटर पर संयुक्त अरब अमीरात के शासकीय सलाहकार अनवर गुरगश ने कहा था कि अबूधाबी का मानना है कि किसी का पक्ष लेने से हिंसा को अधिक बढ़ावा मिलेगा।
रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन का निरस्त्रीकरण होना चाहिए क्योंकि वहां पर हथियारों के अंबार लगे हुए हैं। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने कहा है कि यूक्रेन पश्चिमी हथियारों से भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान इस देश के लिए बहुत बड़ी मात्रा के हथियार भेजे गए। रूस के विदेश मंत्री ने बताया कि ऐसे बहुत से प्रमाण मौजूद हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि यूक्रेन को रूस की सीमा के निकट हथियारों से पाटकर मॉस्को के विरुद्ध एक मोर्चा खोल लिया जाए। उनका कहना था कि ये काम पिछले 2 वर्षों से चल रहा था, किंतु हालिया कुछ महीनों के दौरान इसमें उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि हो गई थी। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोतो, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। इस्लामी गणतंत्र ईरान के मानवाधिकार आयोग के सचिव और न्यायपालिका में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप प्रमुख ने मानवाधिकारों के बारे में पश्चिम के दोहरे रवैये की आलोचना करते हुए कहा है कि मानवाधिकारों को राजनीतिक हथकंडे के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यूक्रेन को लेकर सामने वाले मोर्चे से रूस का टकराव और कई आयामों से समीक्षा योग्य है, जिसमें एक दोनों पक्षों के लिए उसके आर्थिक दुष्परिणाम हैं। हालांकि नेटो के सदस्य देश प्रयासरत हैं कि अधिक कड़े प्रतिबंध लगाकर उससे होने वाले खर्च को पूरी दुनिया में बांटते हैं। स्पष्ट है कि चीजों और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका प्रभाव तेल, ऊर्जा और शेयर बाजार पर स्पष्ट हो चुका है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग हुई। कुछ जगहों पर ईवीएम की खराबी की खबर सामने आई तो कुछ जगहों पर अप्रिय घटनाओं की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक दूसरे पर निशाना साधा।
पहले के हाल आपको याद होगा।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के मानवाधिकार आयोग के सचिव और न्यायपालिका में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप प्रमुख ने मानवाधिकारों के बारे में पश्चिम के दोहरे रवैये की आलोचना करते हुए कहा है कि मानवाधिकारों को राजनीतिक हथकंडे के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। समीक्षा पेश करें साथी अख्तर अब्बास।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के मानवाधिकार आयोग के सचिव और न्यायपालिका में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप प्रमुख ने मानवाधिकारों के बारे में पश्चिम के दोहरे रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि मानवाधिकारों को राजनीतिक हथकंडे के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। काजिम गरीब आबादी ने जिनेवा में मानवाधिकार परिषद की 49वीं बैठक के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार आयुक्त मिशेल बाशलेट से मुलाकात में कहा कि ईरान के लिए नियुक्त किए गए रिपोर्टर ने अपनी अवास्तविक रिपोर्टों द्वारा व्यवहारिक रूप से मानवाधिकार को एक राजनीतिक हथकंडे के रूप में परिवर्तित कर दिया है और सारे नियमों और कानूनों की धज्जी उड़ाते हुए ऐसे माहौल में वो दाखिल हो गए हैं जो मूल रूप से उनके दायित्वों से विरोधाभास रखता है। याद रहे कि इससे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार परिषद ने 23 मार्च को अपनी 46वीं बैठक में एक प्रस्ताव पारित करके ईरान के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार आयोग के विशेष रिपोर्टर जावेद रहमान की कार्यावधि को 1 साल के लिए बढ़ा दिया था। جاوید رحمان نے اپنی حالیہ رپورٹ میں اتیت کی بھانتی تہران کے ورودھ پرانے اور گھسے پٹے آروپوں کو دہرایا تھا اور ایران پر مانوادھیکار کے الگھن کا آروپ لگایا تھا۔ مانوادھیکار وہ مدعا ہے جس کو ہمیشہ سے ہی سوتنتر دیشوں پر دباؤ کو ڈالنے کے لیے ہتھ کنڈے کے روپ میں پریوگ کیا جاتا رہا ہے اور اس چیز کو ہم کچھ وشیش دیشوں کے ورودھ دیکھتے رہے ہیں۔ اگر اس وشے کو دنیا کے لوگوں کے جیون کو بہتر بنانے کے سادھن کے روپ میں پریوگ کیا جاتا تو ٹھیک تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ سہت پشچمی دیش ہمیشہ سے ہی اس وشے کا دروپیوگ کرتے ہوئے دوہرے ماپدنڈ کا پریوگ کرتے ہیں اور ایران سہت سوتنتر دیشوں پر اپنی اچھاؤں کو تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔
یوکرین کو لے کر سامنے والے مورچے سے روس کا ٹکراؤ اور کئی آیاموں سے سمیکشا یوگی ہے، جس میں ایک دونوں پکشوں کے لیے اس کے آرتھک دشپریڑام ہیں۔ حالانکہ نیٹو کے سدس دیش پریاسرت ہیں کہ ادھک کڑے پرتیبندھ لگا کر اس سے ہونے والے خرچ کو پوری دنیا میں بانٹتے ہیں۔ اسپشٹ ہے کہ چیزوں اور سیواؤں کے مول میں وردھی ہوگی، جس کا پربھاؤ تیل، ارجا اور شیئر بازار پر اسپشٹ ہو چکا ہے۔ مشتبہ قاسم زادے کی رپورٹ پیش کرنا، ساتھی قائم رضوی۔
یوکرین کو لے کر سامنے والے پکش سے روس کا ٹکراؤ کئی آیاموں سے سمیکشا کے یوگی ہے، جن میں سے ایک دونوں پکشوں کے لیے اس کے آرتھک دشپریڑام ہے۔ حالانکہ نیٹو کے سدسیہ دیش کڑے سے کڑے پرتیبندھ لگا کر اس سے ہونے والے خرچے کو پوری دنیا کے کاندھوں پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ اسپشٹ ہے کہ چیزوں اور سیواؤں کے مولیوں میں وردھی ہوگی، جس کا پربھاؤ تیل، ارجا اور شیئر بازاروں پر اسپشٹ ہو چکا ہے۔ وشو استر پر مانگ میں کمی کے ساتھ اتپادن کم ہو جائے گا اور بھوشیہ میں آرتھک استھرتا کو خطرہ ہوگا۔ اب بہت ہی گمبھیر کال آرمبھ ہو چکا ہے، ایسے میں راجنیتاؤں کو کٹھن آرتھک فیصلے لینے ہوں گے۔ اس سمے روس کو پرتیبندھت کرنے کے لیے روسی ویمانوں کو اپنی سیما میں نہ آنے دینے، روس کے لیے بندرگاہوں تک پہنچ کو سیمت کرنے اور اس جیسی پشچم کی کاروائیوں نے یہ چنتا پیدا کر دی ہے کہ تناؤ کے کارن پرتیبندھوں کو بڑھانے سے دنیا کی 11ویں سب سے بڑی آرتھک شکتی کو پرتیبندھت کرنے سے عام لوگوں کے لیے بہت ادھک سمسیائیں پیدا ہو جائیں گی۔ ان پرتیبندھوں کے دشپرینام ان دیشوں پر بھی پڑیں گے جنہوں نے اس سنکٹ میں ادھکتر اپنے آپ کو تٹست ہی رکھا ہے۔ ہم نے روس کی بہت سی بینکوں کی سوئفٹ تک پہنچ کو روک دیا ہے اور روس کی کیندریہ بینک کو ہم نے پرتیبندھت کر دیا ہے۔ ہمارا ادیش روس کی کیندریہ بینک کو پنگو بنانا ہے تاکہ اس کی پہنچ پونجی تک پھر نہ ہو سکے۔ ویشوک آرتھک تناؤ کا ایک پریڑام یہ نکلا ہے کہ یورپ، وشیش کر پشچمی یورپ کے لیے ارجا کی آپورتی بادھت ہونے سے یورپی سنگ کو 46 ارب پاؤنڈ کا گھاٹا اٹھانا پڑا ہے۔ فارم ڈاک کی رپورٹ کے انوسار روس اور یوکرین میں وشو کے 40% غلے کی پیداوار بھی پشچمی پرتیبندھوں کے کارن بہت پربھاوت ہوئی ہے، جس کا اثر دوسرے دیشوں میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ان کاموں سے وہاں پر مہنگائی میں لگاتار وردھی ہی ہوتی جا رہی ہے۔ جو بائیڈن نے روس کے ورودھ جو پرتیبندھ لگائے ہیں، ان کا برا آرتھک اثر امریکہ میں بھی دیکھنے کو ملے گا۔ یہ پرتیبندھ وشو اور امریکہ کی ارتھویوستھا میں سدھار کی پرکریا کو ہلکا کریں گے، جو کووڈ سے پربھاوت رہی ہے۔ یوکرین یدھ کا پہلا اثر شیئر مارکیٹ میں دیکھنے کو ملا، جو حالانکہ بعد میں سنبھل گیا، لیکن جھڑپوں کے جاری رہنے سے تیل کے مولیوں میں وردھی ہو گئی۔ بدھوار کو ہر بیرل تیل کی قیمت بڑھ کر $110 ہو گئی، جو پچھلے 8 ورشوں میں بہت ہی ابھوتپورو قیمت بتائی جا رہی ہے۔ یوکرین یدھ کی چھایا شیئر مارکیٹ پر بھی پڑی ہے، جو کم پربھاوی رہی، لیکن سب کو یہ بات پتا ہے کہ یہ مدعا استھائی نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور اس کے گھٹکوں نے یہ کہا ہے کہ وہ یوکرین یدھ میں روس کے ساتھ سیدھا سینے ٹکراؤ نہیں چاہتے ہیں، لیکن یوکرین یدھ جتنا لمبا ہوتا جائے گا، پشچم اور امریکہ روس پر ادھک سے ادھک آرتھک پرتیبندھ لگانے پر مجبور ہوں گے۔ اس کے ادھک آرتھک دشپربھاؤ روس، پشچم اور وشو کی ارتھویوستھا پر پڑیں گے۔ لندن سے IRIB کے لیے مشتبہ قاسم زادے کی رپورٹ۔
भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग हुई। कुछ जगहों पर ईवीएम की खराबी की खबर सामने आई तो कुछ जगहों पर अप्रिय घटनाओं की।
उत्तर प्रदेश में 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 5 बजे तक 53.51% वोटिंग हो चुकी है। 200 से ज्यादा जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी सामने आई है। हालांकि अभी भी बड़ी बड़ी कतारें लगी हुई हैं। जो लोग भी वोटिंग सेंटर में एंट्री कर चुके हैं उनको वोटिंग देने की इजाजत मिल चुकी है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा शिकायतें गोरखपुर महाराजगंज बस्ती से आई हैं। गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे चंद्रशेखर ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शिवपुर सहबाजगंज में वोट डालने पहुंची महिला को बताया गया कि उनका वोट पहले ही पड़ चुका है। महिला को लेकर बूथ पर पहुंचे चंद्रशेखर को देख विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। उधर मानबेला में भी कई घंटे तक ईवीएम खराब रही। कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से चुनाव लड़ रहे स्वामी प्रसाद मौर्या के बेटे अशोक को पुलिस ने जिले से बाहर निकाल दिया। बुधवार रात को पुलिस ने अशोक को नोट बांटने की शिकायत पर हिरासत में लिया था। रात में करीब 8 घंटे तक उनको थाने में ही बैठा रखा। उसके बाद आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया। इन सब के बीच अम्बेडकर नगर के आलापुर में वोट डालने की फोटो वायरल करने के मामले में डीएम ने आरओ को कार्यवाही के आदेश दिए हैं। यहां एक व्हाट्सएप ग्रुप में शिवपाल यादव नाम के व्यक्ति ने वोटिंग करने का वीडियो वायरल कर दिया था। उधर बलिया की बांसडी सीट से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी केतकी सिंह की सपा और सुभाषपा समर्थकों से बूथ के बाहर झड़प हो गई। काफी देर तक धक्का मुक्की हुई, इससे वहां भगदड़ मच गई। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने आकर मोर्चा संभाला। यहां से नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में पूजा अर्चना की। फिर वोट डालने के बाद उन्होंने 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। उधर जौनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा पर निशाना साधा।
पहले के हाल आपको याद होगा, इन गोर परिवारवादियों ने तो पूर्वांचल के लोगों को अपने हाल पर जीने के लिए छोड़ दिया था। साथियों, इन गोर परिवारवादियों की पूरी कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश जात पात में बांट जाए।
वहीं अखिलेश यादव ने भी नरेंद्र मोदी को करारा जवाब दिया।
भारतीय जनता पार्टी के इस छठे चरण में बूथ पर भूत नाचते नजर आएंगे। बताओ बाबा मुख्यमंत्री जी ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? उनका चेहरा देखा आजकल, ऐसा लग रहा है चेहरा जैसे 12 बज गए हो।
मोहसिन रिजवी, रेडियो तेहरान, लखनऊ।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा सफल महिलाएं, पर उससे पहले आप सुनिए दूसरा साप्ताहिक कार्यक्रम आज की बात।
आज की बात। दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। रविश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम भारत में हिजाब को लेकर व्यापक होते विवाद के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आएगा। हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां हर धर्म और जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं। भारत की गंगा जमुना संस्कृति का एक लंबा इतिहास है। इस देश पर जब भी किसी दुश्मन ने हमला किया, तब तब इस देश के सभी धर्म और जाति के लोगों ने एक साथ मिलकर हर दुश्मन का मुकाबला किया है। दुनिया में अगर लोकतंत्र देशों की बात की जाती है तो भारत का नाम उन देशों में सबसे ऊपर होता है, लेकिन इधर कुछ समय से ऐसा लगता है कि जैसे धरती के इस महान देश को किसी की नजर लग गई है। नफरत का जो बीज अंग्रेजों ने बोया था, अब वो बीज बड़े बड़े पेड़ों में बदल गए हैं। आज भारत की स्थिति यह है कि छोटे छोटे मामलों पर धर्म और जात के नाम पर लोग एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, राजनीति का प्रमुख हथकंडा भी धर्म बनकर रह गया है। इधर कुछ समय से भारत में हिजाब को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। कर्नाटक राज्य के स्कूलों में हिजाब को लेकर मचे बवाल और विवाद के बाद इस विवाद की आग अब भारत की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है। भारत के समाचार सूत्रों के मुताबिक दक्षिण दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति ने अपने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि SDMC के प्राथमिक स्कूलों में छात्र छात्राएं धार्मिक पोशाक पहनकर न आएं और उन्हें निर्धारित ड्रेस कोड में ही स्कूल में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। इसी बीच दिल्ली के मुस्तफाबाद के तुखमीपुर इलाके में सरकारी स्कूल में कक्षा 6 की छात्रा बीते 21 फरवरी को पहली बार स्कूल में गई थी, जब उसे कथित तौर पर प्रवेश के लिए हिजाब हटाने के लिए कहा गया था। पीड़ित छात्रा अदीबा ने बताया,
स्टाफ मैन के स्कूल में मत आना, नहीं तो क्लास से बाहर निकाल दूंगी। मम्मी मत बनाओ, कल से क्लास में स्कार्फ मत पहन के आना। मम्मी मत बनाओ, उनकी तरह स्कार्फ पहन रखा है।
दिल्ली के स्कूल में हिजाब को लेकर घटी घटना पर मुस्लिम छात्रा अदीबा के पिता अयूब ने भी बताया कि जब वो इस संबंध में स्कूल प्रशासन से मिलने गया और उनसे इस बारे में पूछा तो स्कूल प्रशासन ने कहा कि स्कार्फ पहनने की इजाजत स्कूल के अंदर नहीं है, बाहर तक पहन कर आ सकती है। अयूब बताते हैं,
मैं गया था आज प्रिंसिपल से मिलने के लिए अपनी बेटी को लेके, तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए स्कार्फ के मैडम, तो मैम ने मुझे बोला कि स्कार्फ के लिए अलाउ नहीं किया है, ड्रेस प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए। और मैं उनसे मैं एप्लीकेशन लेके गया था और एप्लीकेशन पे रिसीविंग भी लेने के लिए गया था, लेकिन मैम ने ना तो रिसीव किया और मैं उनकी बात को रिकॉर्ड करने के लिए फोन चलाया तो उन्होंने मेरा फोन छीन लिया टीचरों ने मिलके, और बोला कि हम पुलिस कंप्लेंट कर देंगे, 100 नंबर पे कॉल कर देंगे अगर आपने दोबारा वुमेन वीडियो बनाई तो। आपको पता नहीं कौन सी धारा लगती है अगर आप वीडियो बना रहे हैं किसी वुमेन की, रजिस्टर ऑफिसर की। और उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया कि बच्चे को, मतलब स्कूल के बाहर तक अलाउड है स्टाफ, स्कूल के अंदर कोई अलाउड नहीं है। मैंने कहा अगर दिल्ली गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन है जो स्टाफ पहन के ना आए तो वो मुझे दिखा दो, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया इस चीज का और हमें एक्सप्लेन करके बाहर भेज दिया। कोई सोल्यूशन नहीं है इस बात का, अपनी कार्रवाई की जाए।
छठी क्लास की छात्रा अदीबा जो अभी मासूम है वो नहीं समझ पा रही है कि कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि कल तक जिस स्कार्फ को पहनकर वो आराम से स्कूल आ रही थी, आज उसी स्कार्फ को लेकर उसको रोका जा रहा है, उसे बातें सुनाई जा रही हैं और यहाँ तक कि उसको और उसके परिवार को धमकाया भी जा रहा है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब भारत के अलग अलग राज्यों में फैलता जा रहा है। इस बीच दिल्ली में सामने आए हिजाब विवाद पर आम आदमी पार्टी के विधायक हाजी यूनुस का एक बयान भी चर्चा का विषय बना, जिसमें उनसे जोड़कर कहा गया कि हाजी यूनुस ने कहा है कि उन्होंने दिल्ली के स्कूलों में हिजाब पहनने वाली छात्राओं के लिए अलग से कमरा बनाने का सुझाव दिया है। इस आरोप पर हाजी यूनुस कहते हैं,
देखिए सबसे पहली बात, स्कूल के अंदर जो रूम है कोई अभी अलाउड नहीं हुआ। ये रूम 2017 में एक बच्ची की एक शिकायत आई थी, मैं तो जब उस वक्त विधायक भी नहीं था, तभी जो स्कूल मैनेजमेंट वहाँ के जो HOS थी उन्होंने कहा कि भाई एक रूम हम इनके लिए सेपरेट, अलग जो गार्डों का एक रूम होता है, कि जो चेंज करना चाहे चेंज कर ले, जो ना करना चाहे ना करें, कोई पाबंदी तो है नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि हिजाब के ऊपर कोई पाबंदी है, वो अपना चेंज करके, क्योंकि अंदर सारी ही लड़कियां हैं पढ़ने वाली, पढ़ाने वाली टीचर वो भी सब लेडीज हैं। तो मैंने कहा जिनकी मर्जी है, जो करना चाहे कर लें, जो नहीं करना चाहे ना करें। और मैंने कहा अगर एक सी ड्रेस में, अगर आप खुद भी एक बात है, अगर एक सी ड्रेस में सारे बैठे होते तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन उन्होंने उसको गलत तरीके से मेरी बात को फैलाया है। देखिए ये इस वक्त जो UP का इलेक्शन चल रहा है, ये जो 5 स्टेट का इलेक्शन था जिनमें से 3 स्टेट का इलेक्शन हो चुका, अब जो यूपी का जो इलेक्शन चल रहा है इसमें फासीवादी ताकतों की जो हार हो रही है उसको देखकर ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि किस तरह से माइनॉरिटी के वोट को डिवाइड किया जा सके। ये एक पॉलिटिकल मैटर है और इस पॉलिटिकल मैटर को में ये जितना भी झूठ फैला सकते हैं फैलाएंगे।
जहां हाजी यूनुस कह रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों में हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं है, वहीं बीजेपी की नेत्री और एसडीएमसी की एजुकेशन कमेटी की चेयरमैन निकिता शर्मा इस संबंध में कहती हैं।
हाल ही में मेरे सामने एक घटना आई कि इस स्कूल को, जो कि विद्या का मंदिर है, इस स्कूल को भी रिलीजन में बांटने की कोशिश की जा रही है। एक स्कूल में इस तरह की कंप्लेंट आई कि बच्चे हिजाब पहन के आ रहे हैं, जो कि मेरा मानना यह है कि जो स्कूल है वो विद्यालय, विद्या का मंदिर है, तो वहां पे सब एक समान दिखें। हम सभी धर्मों को एक समान मानते हैं, सभी के लिए हम आदर से नमन करते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें इस तरह का भेदभाव ना आए, इसके लिए मैंने ये आदेश जारी करे हैं कि सब ड्रेस में आए, जो हमारी स्कूल की ड्रेस है, बच्चे सुंदर दिखते हैं और वही एक समान पहन के आए।
दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात। इस कार्यक्रम में हम हर गुरुवार को चर्चा करते हैं भारत के महत्वपूर्ण विषयों पर। कार्यक्रम आज की बात
इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी सामने आए और उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि किसी भी स्कूल में हम भेदभाव नहीं होने देंगे। दिल्ली सरकार ने किसी भी स्कूल के लिए हिजाब को लेकर कोई नई गाइडलाइन नहीं जारी की है। सभी स्कूलों में सभी धर्मों का सम्मान होता है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कहते हैं,
पहले से कल बताया भी था कि एक अच्छा दिल्ली में सारे स्कूल्स में दिल्ली के सारे बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए बहुत अच्छी शानदार व्यवस्था चल रही है। अब उसको लेके कुछ कुछ राजनीति करने की कोशिश हो रही है। हमारे यहाँ अच्छे से सारी बच्चियां, हर धर्म हर जाति की बच्चियां हमारी बच्चियां हैं, डिग्निटी है और सबको कहीं कोई हमारी तरफ से कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, सबके परंपराओं का सम्मान करते हुए होता है। और जो मैंने भी पूछा इसके बाद कि ये हुआ क्या, कैसे हुआ, तो अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई किसी को प्रॉब्लम है, कहीं किसी एक केस में कहीं प्रॉब्लम हुई और उसको किसी टीचर ने कुछ बोला, वो बहुत उस तरह का है। सरकार की ओर से हमारे स्कूल सिस्टम, एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत केयर करके एक एक बच्चे को अपनी तरफ से हम लोग कदर करते
हैं। वहीं भारत में लगातार हिजाब पर चले आ रहे विवाद को लेकर कांग्रेस की तेज तर्रार नेत्री अलका लामा ने खुलकर बोलते हुए कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत में कट्टरपंथी और चरमपंथी विचारधारा के लोगों ने सत्ताधारी बीजेपी के समर्थन से अपना सिर उठा लिया है और वे लगातार देश के लोगों के खाने, पहनने और पढ़ने को लेकर अपनी विचारधारा को थोपना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश का संविधान हर किसी को आजादी के साथ जीवन व्यतीत करने की इजाजत देता है, लेकिन कट्टरपंथी विचारधारा के लोग राष्ट्रवाद के नाम पर देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अलका लामा कहती हैं,
देखिए हिजाब मामला जो है वो कोर्ट में सुनवाई उसकी चल रही है। हमारा ये मानना है जो आजादी संविधान ने दी है उस आजादी को कांग्रेस किसी को भी किसी भी कीमत पे छीनने नहीं देगी। आधी आबादी महिलाओं की तय करेगी उसको क्या पहनना है, क्या जिंदगी में करना है, क्या नहीं करना है, और ये आजादी हमें हमारे संविधान ने दी है कौन क्या पहनेगा क्या नहीं। स्कूल की बात कही गई तो स्कूल में हम सब पढ़े हैं, बिल्कुल स्कूल की एक यूनिफॉर्म होती थी। अगर जूते पॉलिश नहीं है या टाई का रंग बदल जाता था तो फाइन लगता था और अगले दिन हमें कहा जाता था। लेकिन जब हम कॉलेज में आ गए, अब हम 18 साल से ऊपर हो गए, अब हमारे सारे संवैधानिक हक अधिकार हमें मिलने लग गए, वोटिंग से लेकर हर किस हक हमें मिला है। अब उसके बाद हमारा कॉलेज में कोई ड्रेस कोड नहीं है, तो ये विवाद पैदा किया गया, जान के पैदा किया गया, उत्तर प्रदेश के चुनावों के मद्देनजर किया गया, उस राज्य में किया गया जहां पर भाजपा की सरकार है और अल्पसंख्यकों को टारगेट करने के लिए किया गया है। भाजपा संघ आरएसएस की एक सोच है, कौन लोग हैं जो इस विवाद में, हमारी एक बच्ची जो हिजाब में थी किस तरीके से भेड़िए उसके पीछे दौड़ रहे थे, वो बच्ची हमारी डरी नहीं, डट के खड़े होकर मुकाबला किया, क्योंकि उस बच्ची को मानती है कि उसने जो भी पहना था अपनी मर्जी से पहना था, किसी के दबाव में नहीं, और वो पहनावा उसको आजादी संविधान ने दी है। मैं हम तारीफ करते हैं उस बच्ची की, इसलिए साफ बात है कि ये भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है। अब दुख की बात यह कि जिस राजधानी दिल्ली में मैं बैठी हूं वहां केंद्र में भाजपा की सरकार है और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। यहां पर भी एक स्कूल का इंसिडेंट है, एक बच्ची जो हिजाब में थी वो पहले भी जाती रही, आज एक टीचर उसको ये कहती है अम्मी बनने की कोशिश मत करो, क्लास में आने से पहले से उतार कराओ। अभी तक परेशानी नहीं थी तो अब परेशानी क्यों, नंबर एक। नंबर दो, कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो कोर्ट में फैसला आ जाने दीजिए, जो जैसा चल रहा है उसे अब चलने दीजिए, जो संवैधानिक हक और अधिकार मिला है उसे आप छीनेंगे, जो अभी तक चल रहा था उसे आप बिना सर्वसम्मति के बातचीत के अपने सिर्फ सत्ता के दम पर बदलने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आवाजें तो उठेंगी। तो मेरा ये कहना है संविधान के साथ खिलवाड़ मंजूर नहीं किया जाएगा, महिलाओं की आधी आबादी की, हमारी बच्चियों की आजादी को हम यूं ही आपको छीनने नहीं देंगे। आपको रास्ता कानून के थ्रू निकालना, जो कोर्ट में सुनवाई चल रही है वहां हर कोई अपना पक्ष रख रहा है, नहीं तो बातचीत के बाद सब सहमति से बनेगा, एक तरफा थोपा नहीं जाने देंगे कोई भी फैसला।
मिलाकर इस समय हिजाब को लेकर भारत में चल रहा विवाद अब केवल भारत तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि दुनिया भर में इसकी धमक सुनाई दे रही है। अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई देशों ने भारत में लगातार बढ़ते चरमपंथ पर चिंता जताई है और स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों को मानवाधिकार का उल्लंघन बताया है। वहीं इस्लामी सहयोग संगठन ने भी भारत में हिजाब को लेकर चल रहे विवाद पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है और दिल्ली सरकार को देश के मुसलमानों के प्रति हो रहे भेदभाव पर गंभीरता से संज्ञान लेने की अपील की है। वहीं इस्लामी गणतंत्र ईरान में भी छात्र और छात्राओं के कई बड़े संगठनों ने भारत में हिजाब को लेकर हो रहे विवाद की कड़े शब्दों में निंदा की है और हिजाब पहनने वाली सभी छात्राओं के समर्थन का ऐलान किया है। बहरहाल हमें आशा है कि भारत में कट्टरपंथियों और चरमपंथियों द्वारा सजाया गया नफरत का बाजार ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है और बहुत जल्द इस देश के लोगों की एकता, आपसी प्रेम और भाईचारा नफरत का सौदा करने वालों की दुकानों को बंद कर देगा। तो दोस्तों, एक बने, नेक बने और नफरत से दूर रहे, इसी आशा के साथ हमें अनुमति दे।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम।
सफल महिलाएं।
दोस्तों, कार्यक्रम सफल महिलाएं की एक अनकड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं रविश जैदी और मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, हमेशा की तरह आज के कार्यक्रम में हम ईरान की एक सफल महिला से आपका परिचय कराएंगे। ईरान में न्यायपालिका सप्ताह के आगमन पर हम आज के कार्यक्रम में एक ईरानी महिला न्यायाधीश से आपका परिचय करवा रहे हैं। एक ऐसी महिला जो स्वयं के अनुसार न्याय स्थापित करने और विवादों को सुलझाने के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए किसी भी तरह के दबाव को स्वीकार नहीं करती हैं। कमरी शमसी साल के 3 महीने की 7वीं तारीख अर्थात 28 जून को ईरान में न्यायपालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। ईरान की इस्लामी व्यवस्था के 3 स्तंभ हैं, जिनमें से एक न्यायपालिका भी है। इस्लामी व्यवस्था के स्तंभ में अधिकारों को उसके हकदारों तक पहुंचाना और न्याय स्थापित करने के लिए एक विशेष संरचना है और साथ में बहुत सी विभिन्न जिम्मेदारियां भी इसमें शामिल हैं।
न्याय स्थापित करने का मुद्दा अन्य महत्वपूर्ण इस्लामी मुद्दों की ही तरह है। ये भी मुद्दा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए से संबंधित है। अन्य बातों के अलावा इस स्थिति में महिलाएं अपनी नाजुक और समृद्ध भावनाओं के कारण न्याय के क्षेत्र में निर्णय नहीं ले सकती हैं। इससे ये धारणा पैदा हुई है कि कोई भी महिला जज के रूप में काम नहीं कर सकती है। आज ईरान की राजधानी तेहरान प्रांत की डिप्टी चीफ जस्टिस के रूप में श्रीमती महीन दोख्त दाऊदी कार्यरत हैं। वो अपने निष्पक्ष निर्णयों को लेकर प्रसिद्ध हैं। श्रीमती महीन दोख्त दाऊदी इस बारे में कहती हैं कि इस समय ईरान में लगभग 1900 महिला न्यायाधीश हैं। इनमें से बहुत सारी महिला न्यायाधीश देश की न्याय व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी हैं।
इस्लामी क्रांति की सफलता से पहले पूरे ईरान में केवल 33 महिलाएं ऐसी थीं जो देश के न्यायालयों में कार्यरत थीं। इन सभी महिलाओं को अदालती मामलों में सीधे मतदान करने की अनुमति भी दी गई थी। ईरान के बुशहर के रहने वाले अब्दुल खालिक छुबक की बेटी मैमनत छुबक ऐसी पहली महिला थीं जो ईरान की न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा बनी। वर्ष 1972 में मैमना चुबक ने तेहरान के शहीद बेहिश्ती विश्वविद्यालय से न्यायिक कानून में मास्टर डिग्री प्राप्त की थी। उसके बाद उन्होंने न्यायिक और आपराधिक प्रक्रिया कानून, नागरिक अधिकारों, न्यायपालिका, अर्थशास्त्र और वित्त संकाय में मौलिक अधिकारों के क्षेत्र में पढ़ाना शुरू कर दिया था। इसी तरह मैमना चुबक ईरान के अंदर और विदेशों में भी कई कानूनी और वैज्ञानिक सम्मेलनों में भी वक्ता के रूप में शामिल हुई थीं।
जैसा कि हमने कार्यक्रम के आरंभ में बताया था कि आज हम ईरान की एक ऐसी महिला न्यायाधीश से आपका परिचय कराएंगे कि जो स्वयं अपने बारे में कहती हैं कि वो न्याय को स्थापित करने और मतभेदों को हल करने के लिए किसी दबाव और सीमा को स्वीकार नहीं करती हैं और ये प्रयास करती हैं कि उनके नज़दीक सत्य साबित हो जाए और उसके बाद निर्णय लें। जब सच्चाई उनके सामने आ जाती है तो वो कोशिश करती हैं कि जहां आरोपी को उसके अपराधों की कानून के तहत सज़ा मिले, वहीं वो ये भी प्रयास करती हैं कि आरोपी अपनी सज़ा के साथ साथ समाज से उसकी हो चुकी दूरी को वो कम कर सके और वो अपने किए की सज़ा भुगतने के बाद जब समाज में वापस आए तो फिर एक अपराधी के तौर पर उसकी वापसी ना हो बल्कि समाज से जुड़े हुए एक व्यक्ति के तौर पर वो फिर से अपनी पहचान बना सके।
ईरान की सफल महिला न्यायाधीश अपना परिचय कुछ इस अंदाज में करवाती हैं और कहती हैं, मेरा नाम महबूबा मिर्जा बेगी है। ईरान के किरमान प्रांत के रफसंजान शहर के एक धार्मिक और सांस्कृतिक परिवार में वर्ष 1985 के फरवरी महीने में मेरा जन्म हुआ है। मेरी शिक्षा की शुरुआत से दूसरों के अधिकारों को पूरा करना मेरे लिए महत्वपूर्ण था। मेरी राय में कानून का क्षेत्र एक बहुत ही दिलचस्प क्षेत्र है जो हर दिन के विभिन्न मुद्दों जैसे परिवार, वित्तीय मामलों और सामाजिक संबंधों से जुड़ा हुआ है। ये क्षेत्र सामाजिक संबंधों को आकार देने के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन के संबंधों को भी आकार देता है और इसीलिए मुझे इस क्षेत्र में बहुत दिलचस्पी हो गई है।
न्यायाधीश महबूबा मिर्जा बेगी बताती हैं कि विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष में ही उन्होंने विवाह कर लिया था और इसीलिए उनकी कामयाबी में उनके पति की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उच्च डिग्री के साथ अपनी स्नातक डिग्री पूरी करने के बाद मैंने मास्टर की प्रवेश परीक्षा पास आउट किया और न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय को अपनी मास्टर डिग्री के लिए चुना। मिर्जा बेगी आगे बताती हैं कि मेरे रास्ते में बहुत बार बाधाएं आईं और मुझे लगा कि अब यही सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं ईश्वर की कृपा और न्यायपालिका के समर्थन के लिए हमेशा आभारी रहती हूँ। मेरे रास्ते में आने वाली सभी रुकावटें समाप्त हो गईं और ईश्वर की ही कृपा से मेरी न्याय को स्थापित करने की प्रक्रिया पर रोजमर्रा की जिंदगी का कोई भी असर नहीं पड़ा। वो बताती हैं कि मैं बहुत सारे शोध और वैज्ञानिक अध्ययन करती हूँ और औसतन मैं लगभग हर दिन 2 घंटे वैज्ञानिक या व्यक्तिगत अध्ययन करती हूँ।
श्रीमती महबूबा मिर्जा बेगी द्वारा अंजाम दिए गए वैज्ञानिक कार्यों में 3 पुस्तकें, कई वैज्ञानिक शोध लेखों, दर्जनों वैज्ञानिक लेखों, अनुसंधान की वैज्ञानिक पत्रिकाओं में लिखे गए अनेक लेखों और कई राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलनों में दिए गए सैकड़ों भाषण हैं। वो वर्तमान में मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी अध्ययन कर रही हैं। डॉक्टर महबूबा मिर्जा बेगी ने आपराधिक कानून के साथ ही इस्लामी अपराध विज्ञान पर एक नए दृष्टिकोण के साथ स्नातक किया है। उनके अनुसार उन्होंने अपना न्यायिक कार्य वर्ष 2010 में शुरू किया और वर्ष 2016 से उनके न्यायिक कार्य में एक नया अध्याय आरंभ हुआ। डॉक्टर मिर्जा बेगी ने सबसे पहले किरमान प्रांत के सामाजिक सहायता निवारण एवं अपराध के रोकथाम के उपनिदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाला था। वो कहती हैं कि न्यायिक प्रक्रिया की दुनिया कई कठिनाइयों, चुनौतियों और तनावों से भरी हुई है क्योंकि इंसानों के अधिकार, संपत्ति, जीवन और यहाँ तक कि परिवारों की नींव भी हमारे फैसलों पर निर्भर करती है, लेकिन इन सब के बावजूद इस काम में पाई जाने वाली मिठास भी अनोखी है क्योंकि जैसे ही आप किसी को खुश करते हैं, आप किसी की समस्याओं को हल करते हैं और आप मतभेदों को समाप्त कराते हैं तो ये प्रक्रिया आपको ऐसा आनंद देती है कि जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।
निसंदेह कोई भी काम इंसान के निजी जीवन पर भी असर डालता है, लेकिन मायने ये रखता है कि आप इसे कैसे मैनेज करते हैं। श्रीमती मिर्जा बेगी के लिए जितना काम महत्वपूर्ण है उतना ही उनके लिए उनका परिवार और उनकी माँ की भूमिका भी अहम है। वो इस संबंध में कहती हैं कि मैं अपने बच्चे के साथ घर पर लंबे समय तक काम करती हूँ और अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए लगातार प्रयास करती रहती हूँ और उसे उसकी कामयाबी के रास्तों के बारे में बताती हूँ और मार्गदर्शन करती हूँ। डॉक्टर बेगी कहती हैं कि मेरे पति भी एक न्यायाधीश और आपराधिक कानून एवं अपराध विज्ञान में डॉक्टरेट के छात्र रहे हैं और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। वे एक बेहतरीन जीवन साथी होने के साथ साथ संयम और धैर्य के आदर्श हैं और उनका अच्छा चरित्र दूसरों के लिए नमूना है।
न्यायिक कार्य के साथ हमेशा कड़वी और मीठी यादें जुड़ी हुई होती हैं। न्यायाधीश महबूबा मिर्जा बेगी इन्हीं यादों में से एक के बारे में बात करते हुए कहती हैं कि एक मामला पेशेवर और संगठित साइबर धोखाधड़ी को मेरे पास लाया गया। मामले में प्रतिवादियों में से एक सेवानिवृत्त शिक्षक था और उसकी पत्नी भी शिक्षिका थी। इस पूरे मामले में मेरा सुझाव जानने के लिए केस डायरी को मेरे पास भेजा गया। कार्यवाही के दौरान आरोपी जब मेरे सामने आया तो उसने कहा कि उसके खिलाफ दो शहरों के साथ साथ अन्य प्रांतों में भी इसी संबंध में मुकदमा दर्ज हो चुका है और वो गिरफ्तार भी हो चुका है, जबकि इन मामलों के बारे में उसकी आत्मा को भी खबर नहीं है। तो मुझे संदेह हुआ। मिर्जा बेगी कहती हैं कि मैंने इस मामले की जांच के लिए कई टीमों का गठन किया और गहन जांच के आदेश दिए और आखिरकार नतीजा मेरे सामने था। मैंने इस मामले के असली और मुख्य आरोपी की, जिसने जाली दस्तावेजों की बुनियाद पर धोखाधड़ी करके करोड़ों की कमाई कर रखी थी, पहचान करके उसे मृत्युदंड दे दिया।
न्यायाधीश महबूबा मिर्जा बेगी कहती हैं कि ये मेरी मीठी यादों में से एक थी। मुझे याद है कि उस आरोपी की पत्नी मेरे कमरे में आती है कि जिसे झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया था, और खुशी से रोते हुए कहती है कि इस मामले की वजह से मेरी बहू मेरे बेटे से अलग होना चाहती थी, लेकिन अदालत से मिले इंसाफ ने मेरा और मेरे बेटे के जीवन को फिर से खुशहाल बना दिया है। मिर्जा बेगी कहती हैं कि इस घटना को 7 वर्ष का समय बीत रहा है, लेकिन उसके बावजूद आज भी उस महिला और उसके पति का धन्यवाद के लिए संदेश आता रहता है। न्याय कार्य मेरे रग रग में बसा हुआ है। मैं इस काम से प्रेम करती हूँ। मैंने इस काम के लिए अपना खून पसीना बहाया है। न्यायाधीश महबूबा मिर्जा बेगी की नज़र में न्याय स्थापित करते समय जिस बिंदु को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए वो है अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना। मिर्जा बेगी इस संबंध में कहती हैं कि मैं हमेशा न्यायिक प्रक्रिया को इस दुआ के साथ शुरू करती हूं कि हे ईश्वर, मेरे कलम, जबान और आत्मा को सुरक्षित रखना, क्योंकि न्याय का कलम समाज का ताना बाना बुन सकता है और जबान किसी के दिल को दुखा सकती है, किसी की आंखों में आंसू ला सकती है और इसके विपरीत। इसीलिए मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण दुआ है कि मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। दोस्तों, कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है। अनुमति दें।
श्रोताओं, ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखिए, पता है parstoday.com/hi। इसी के साथ ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।